एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
धरती पे आया राजा होकर प्रजा बना, स्वर्ग छोड़ के धरती पे आया राजा होकर प्रजा बना। मेरे गुनाहों की माफी देने, मेरे गुनाहों की माफी देने आया तू, आया तू आया, तुझको पहचाना, पर मैंने ना तुझको पहचाना। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, जो भी आया सजा देने आया, पापियों का अंत करने आया,
पापियों का अंत करने आया,
मुझको तू जीवन देने आया, आया तू आया तू आया, पर मैंने ना तुझको पहचाना, पर मैंने ना तुझको पहचाना। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, अनजान बन के रहा उम्र भर मेरे पापों का तू अनंत।
सर्मन नंबर 22। व्हाई वाज जीसस बोर्न?
अब समय है यीशु परमेश्वर का वचन सुनने का।
प्रिय श्रोताओं नमस्कार, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक फिर से आपके पास परमेश्वर का वचन लेकर आया हूँ। आज का मेरा संवाद का शीर्षक है यीशु क्यों जन्म लिया। यीशु क्यों जन्म लिया? प्यारो आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तुझे तेरे सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझे इस सुअवसर के लिए भी धन्यवाद देते हैं। तू हमारे मनों और हृदयों को खोल दे जैसे हम तेरे वचनों को सुनते हैं, और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर कि हम तेरे वचनों को समझ सके और तेरे राह में चल सके। मेरे साथ विशेष रूप से हो कि मैं तेरे वचन को अच्छी तरीका से प्रस्तुत कर सकूं। मुझे तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा चला और मेरे हरेक श्रोताओं को तेरा आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। लगभग 2000 वर्ष पहले स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन से एक रहस्यमय शब्द सुनाई दिया। देख मैं आ गया, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। इब्रानियों 10:5-7। इन शब्दों में उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए घोषणा की गई है जो सनातन काल से छिपा हुआ था। मसीह हमारे जगत में आने वाला था ताकि वह एक शरीर धारण करे। वह कहता है, तूने मेरे लिए एक देह तैयार किया। यदि वह उस महिमा में जो उसका पिता के साथ था इस संसार में अवतरित हुआ होता, तो हम उसके उपस्थिति की ज्योति को सहन नहीं कर पाते। हम उसको देखने से नष्ट ना हो जाएं, इसलिए उसके महिमामय तेज को प्रकट होने से छिपा दिया गया था। उसके ईश्वरत्व को मानवता से ढक दिया गया। उसके अदृश्य महिमा को साक्षात देह में प्रकट किया गया। 1000 से भी अधिक वर्षों से यहूदी लोग उद्धारकर्ता के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। पाप की धोखेबाजी अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। मनुष्य की आत्माओं को विचलित करने के लिए सारी शक्तियां एक हो गई थी। जब परमेश्वर के पुत्र की दृष्टि ऐसे संसार पर पड़ी तो उसने उसकी दुर्गति और दुख को देखा। बड़ी करुणा के साथ मसीह ने देखा कि मनुष्य किस प्रकार से शैतान के अत्याचार के शिकार हो गए हैं। जो लोग भ्रष्ट हो रहे थे, मृत्यु और संसार में खो जा रहे थे, वह उन लोगों को बड़ी दया के साथ देखने लगा। वे लोग एक ऐसे शासक को चुन लिए थे जो उन्हें अपनी कार के पीछे बांधकर गुलामों की नाई घसीट रहा था। अकुलाए, घबराए और थके हुए वे उस मार्ग पर चल रहे थे जो अंधकारमय और अनंत विनाश की ओर ले जा रहा था, एक ऐसी मृत्यु की ओर जिसमें जीवन की कोई आशा ना थी। एक ऐसी रात की ओर जिसकी कोई सुबह नहीं थी। शैतानी ठेकेदार मनुष्यों से मिल गए थे। मनुष्य के जिस शरीर को परमेश्वर के रहने का स्थान बनाया गया था वह राक्षसों का बसेरा बन गया था। महिमाओं का राजा अपने आप को स्वर्ग से नीचे उतारकर मनुष्य का रूप धारण किया। इस धरती पर ढीठ और घृणा से भरे हुए लोगों के बीच उसे रहना पड़ा। उसकी महिमा भीतर छिपी हुई थी ताकि उसका बाहरी रूप दूसरों को आकर्षित करने वाला ना बने। बाहरी दिखावे के रूप को त्याग दिया था। धन, सांसारिक सम्मान और मनुष्य का बड़प्पन एक व्यक्ति को मृत्यु से नहीं बचा सकते। यीशु ने यह ठान लिया था कि सांसारिक आकर्षण मनुष्यों को उसकी ओर ना खींचे। जो लोग उसके पीछे चलने वाले बने उन्हें केवल स्वर्गीय सत्य की सुंदरता ही उसकी ओर आकर्षित करे। मसीह के स्वभाव के विषय में बहुत पहले से ही भविष्यवाणी द्वारा बता दिया गया था और उसकी इच्छा थी कि मनुष्य उसे परमेश्वर के वचन की गवाही के अनुसार ग्रहण करे। इस महिमामय योजना से स्वर्गदूत आश्चर्यचकित थे। वे बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे कि परमेश्वर के लोग उसके पुत्र को मनुष्य के शरीर में किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। स्वर्गदूत चुनी हुई जाति के देश में आए। दूसरी जाति के लोग कल्पित कथाओं के आधार पर चलते हुए झूठे देवताओं की उपासना कर रहे थे। जिस जाति पर परमेश्वर की महिमा प्रकट की गई और भविष्यवाणी के प्रकाश को चमकाया गया वहां पर स्वर्गदूत आए। वे गुप्त रूप से उस यरूशलेम में आए जिसे परमेश्वर के पवित्र वचन द्वारा प्रकट किया गया था और परमेश्वर के मंदिर के सेवकों के यहाँ भी पधारे थे। उस समय का याजक जकरिया जब वेदी के पास सेवा कार्य कर रहा था तभी मसीह के आगमन के निकटता की घोषणा कर दी गई थी। उसके आगे चलने वाला पहले ही जन्म ले चुका था। उसके कार्यकलाप भविष्यवाणियों और चमत्कारों द्वारा प्रमाणित हो चुके थे। उसके जन्म और उसके आश्चर्यचकित करने वाले कार्यों के समाचार दूसरी जातियों तक फैल चुके थे। फिर भी अपने उद्धारकर्ता का स्वागत करने के लिए यरूशलेम तैयार नहीं था। स्वर्गीय संदेशवाहक बड़े आश्चर्य से उन लोगों को देख रहे थे जिन्हें परमेश्वर ने सत्य के प्रकाश को इस धरती पर फैलाने के लिए बुलाया था। यहूदी जाति को एक गवाह के रूप में सुरक्षित कर लिया गया था कि इब्राहिम और दाऊद के वंश में मसीह जन्म लेगा। फिर भी वे नहीं जान पाए कि मसीह का आगमन द्वार ही पर है। मंदिर के भीतर प्रातः और संध्या का प्रतिदिन का बलिदान मेमने की ओर संकेत करता था। फिर भी यहाँ पर उसके स्वागत की कोई तैयारी नहीं थी। इस जाति के याजक और शिक्षक नहीं जानते थे कि युगों की महानतम घटना घटित होने वाली है। वे व्यर्थ ही प्रार्थनाएं कर रहे थे और मनुष्यों को दिखाने के लिए उपासना की विधियों का पालन कर रहे थे, परंतु सांसारिक प्रतिष्ठा और धन वैभव की चाह के कारण वे मसीह के आगमन के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे ही उदासीनता समग्र इसराइलियों में व्याप्त थी। जिस प्रसन्नता ने स्वर्ग में हलचल मचा दिया था वह स्वार्थी हृदयों और सांसारिक लीनता के कारण इन्हें छू भी ना सकी। केवल कुछ ही लोग अनदेखे को देखने की लालसा कर रहे थे। इन लोगों के लिए स्वर्ग का राजदूत भेजा गया। यूसुफ और मरियम जब अपने घर से दाऊद के नगर नाजरत की यात्रा कर रहे थे तब उन्हें मार्ग में स्वर्गदूत मिले थे। रोमी साम्राज्य का यह आदेश कि उसके राज्य में रहने वाले सारे लोग जो गलील की पहाड़ियों तक फैले हुए थे वे अपना नाम लिखाने के लिए जाएं। प्राचीन काल में राजा क्रुसु को संसार के राज्यों का सिंहासन कहा जाता था कि वह कदाचित प्रभु के बंदियों को स्वतंत्र कर दे। इस प्रकार से कैसर अगस्तुस को परमेश्वर के आदेश को पूरा करने के लिए माध्यम बनाया गया ताकि यीशु की मां मरियम बेतलहम को जाए। वह दाऊद के वंशावली में से थी और दाऊद की संतान का जन्म दाऊद के नगर में होना था। बेतलहम में से भविष्यवक्ता ने कहा था, हे बेतलहम एप्राता, तुम में से जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। मीका 5:2। परंतु उनके वंश के राजकीय नगर में यूसुफ और मरियम को ना तो पहचाना गया और ना ही कोई सम्मान मिला। थके मांदे बेघर वे लोग नगर द्वार से लेकर नगर के अंतिम छोर तक संकरी गलियों से होते हुए अपनी पूरी यात्रा को पूरा किए, परंतु रात को विश्राम करने के लिए उन्हें कोई स्थान नहीं मिला। भीड़ भरे धर्मशालाओं में उन दोनों के लिए कहीं कोई स्थान ना था। अंततः उन्हें एक खंडर समान घर में शरण मिली जहां पर पशु रखे जाते थे और यहां पर संसार के मुक्तिदाता ने जन्म लिया। मनुष्यों को तो ज्ञात नहीं हुआ, परंतु इस सुसमाचार से स्वर्ग में आनंद छा गया। अंतकरण से विनम्र रूपी के साथ स्वर्गीय पवित्र लोग प्रकाश के संसार से नीचे धरती तक उतर आए। उसकी उपस्थिति से सारा जगत प्रकाशमान हो गया था। गलील की पहाड़ियों पर अनगिनत स्वर्गदूतों का झुंड एकत्र हो गया था। वे इस महान सुसमाचार को घोषित करने के लिए आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि इसराइल के अगुए जिस काम को उन्हें सौंपा गया था उसमें वे सही होते तो कदाचित मसीह के जन्म के सुसमाचार के आनंद को दूसरों तक पहुंचाने में वे लोग सहभागी होते, परंतु अब उन्हें एक किनारे कर दिया गया था। परमेश्वर कहता है, मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। यशाया 44:3, भजन संहिता 112:4। वे लोग जो प्रकाश की खोज में हैं और जो प्रसन्नता से उसे ग्रहण करते हैं, उन पर परमेश्वर के सिंहासन से ज्योति की किरण चमकाई जाएगी। उन चारागाहों में जहां बालक दाऊद अपनी भेड़ों को चराया करता था, वहां गड़ेरिए रात को अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। सुनसान रात को उद्धारकर्ता के विषय में आपस में बातें कर रहे थे और दाऊद के सिंहासन के राजा के आने की प्रार्थना कर रहे थे। और देखो, प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। इन शब्दों को सुनते ही उन चरवाहों के दिमाग पर महिमामय दृश्य छा गया। इसराइल, उद्धारकर्ता इसराइल में आ गया। उसके आगमन के साथ साथ शक्ति, प्रशंसा और विजयी भी आ गए। परंतु उनके उद्धारकर्ता की गरीबी और विनम्रता को पहचानने के लिए स्वर्गदूत को उन्हें तैयार करना था। इसका तुम्हारे लिए यह पहचान है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। स्वर्गीय संदेशवाहक ने उनके भय को दूर कर दिया। उसने उन्हें बता दिया कि यीशु को कहाँ पाओगे। उनकी कमजोरी को जानते हुए बड़ी कोमलता के साथ उन्हें यह सौभाग्य दिया कि वे उस महिमामय तेज से अपने आप को उबार ले। तब वह महिमा और आनंद देर तक छिपा नहीं रह सकेगा। परमेश्वर के स्वर्गदूतों के चमकते हुए तेज से पूरा मैदान प्रकाशमान हो गया था। पृथ्वी शांत और चुप हो गई थी और स्वर्ग नीचे झांक कर उस गीत को सुन रहा था। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। काश कि आज मनुष्य जाति उस गीत को समझ पाती। उस समय जो घोषणा की गई थी, जो संगीत का स्वर गूंज उठा था, अंत के समय में वह और बढ़ जाएगा और पृथ्वी के अंतिम शोर तक उसकी आवाज गूंज उठेगी। जब धार्मिकता का सूरज अपनी महिमा के साथ उदय होगा, तब वह गीत बड़ी भीड़ द्वारा जल के गर्जन जैसे शब्दों में फिर गूंजेगा और उन लोगों के शब्द होंगे, हालेलुया, प्रभु हमारा परमेश्वर शक्तिमान राज करता है। प्रकाशित वाक्य 19:6। स्वर्गदूत के हटते ही प्रकाश धीमा पड़ गया और बेतलहम की पहाड़ियों एक बार फिर रात के अंधेरे में डूब गई। परंतु आज तक मनुष्य ने जितनी भी चमकीली वस्तु कभी देखी हो, वैसे ही गडरियों की स्मृति पट पर वह प्रकाश कौंधता रहा। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। उन्होंने बड़े आनंद के साथ जो कुछ सुना और देखा था उसे दूसरों को जाकर बताया और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। जब गडरिये स्वर्गदूतों के गीत को सुन रहे थे उस समय से लेकर आज तक आकाश और धरती में कोई अंतर नहीं पड़ा है। स्वर्ग की दृष्टि में मानव का महत्व वैसा ही है जैसा कि एक साधारण सा व्यवसाय करने वाले सामान्य मनुष्यों से स्वर्गदूतों ने खेतों खलिहानों में मिलकर उनसे बातें की थी। हम जैसे साधारण जीवन व्यतीत करने वालों के लिए स्वर्ग बहुत ही समीप है। जो लोग परमेश्वर के निर्देश अनुसार चलते हैं उनके हर एक कदम पर स्वर्गदूत सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। बेतलहम की घटना एक अंतहीन प्रसंग है। इसमें एक बात निहित है, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर हैं। रोमियो 11:33। उद्धारकर्ता के इस बलिदान को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि उसने स्वर्ग के सिंहासन के बदले में चरनी को और स्तुति और महिमा करते रहने वाले स्वर्गदूतों की संगति को त्याग कर पशुओं के बीच रहना पसंद किया। उसके सम्मुख मनुष्य का घमंड और आत्मसंतुष्टि कोई अर्थ नहीं रखते। फिर भी यह तो उसके आश्चर्यजनक संक्षिप्तता का आरंभ था। जिस समय आदम अदन की वाटिका में अबोध बालक की नाई उसके सामने खड़ा था, उस समय परमेश्वर के पुत्र के लिए मनुष्य के स्वभाव को धारण करना अनंत तिरस्कार होता। परंतु जब यीशु ने यह देखा कि पाप ने इस जाति को इन 4000 वर्षों में बहुत ही कमजोर बना दिया है, तब उसने मनुष्यत्व को स्वीकार कर लिया। आदम के प्रत्येक संतान की भांति वंश परंपरा के नियम के अनुसार उसके परिणाम को स्वीकार कर लिया। उसके क्या परिणाम हुए थे मसीह के इस धरती वाले पूर्वजों के इतिहास से पता चलता है। वह ऐसे वंश परंपरा में पैदा हुआ जहां पर हमारे दुखों और परीक्षाओं में सहभागी बन सके और पाप रहित जीवन बिताकर हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ जाए। स्वर्ग में परमेश्वर के राजसभा में मसीह के गौरवपूर्ण स्थान को देखकर शैतान उससे द्वेष करने लगा और जब उसे वहां से निकाल दिया गया तब तो वह उससे और घृणा करने लगा। शैतान मसीह से तब और जलने लगा जब उसने यह प्रतिज्ञा की कि वह पापियों को अवश्य छुड़ाएगा। फिर भी जिस धरती पर शैतान अपने अधिकार का दावा कर रहा था उसी धरती पर एक कमजोर मनुष्य के स्वभाव में एक दीनहीन बच्चे के रूप में परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को आने की अनुमति दे दी। जिस प्रकार से एक साधारण मनुष्य को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिस प्रकार से प्रत्येक मानव पुत्र जीवन संघर्ष करता है चाहे वह उसमें सफल हो या अत्यंत असफलता हाथ लगे, उसी प्रकार से जीने के लिए परमेश्वर ने मसीह को अनुमति दे दिया। एक मानव पिता अपने पुत्र के लिए सदा भले की कामना करता है। जब वो अपने छोटे बच्चे के मुंह को देखता है तो उसके जीवन में किसी विपत्ति के आने के विचार से ही कांप उठता है। वह चाहता है कि सदा ही शैतान के चंगुल से उसे बचाए, किसी परीक्षा या जीवन संघर्ष से उसे दूर रखे। परमेश्वर ने अपने प्रिय इकलौते पुत्र को इस कड़वे संघर्ष और डरावने संकट का सामना करने के लिए दे दिया, ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चों के जीवन का मार्ग सुरक्षित हो जाए। इसे प्रेम कहते हैं, अद्भुत प्रेम। हे स्वर्गो, हे पृथ्वी, इस प्रेम को देखकर आश्चर्य करो। मसीह के साथ वह व्यवहार किया गया जो हमारे साथ होना चाहिए था, ताकि हमारे साथ वह व्यवहार किया जाए जो मसीह के योग्य हैं। हमारे पापों के कारण उसे अपराधी ठहराया गया जिसमें उसका कोई भाग नहीं था, ताकि उसकी धार्मिकता के कारण हमें निर्दोष ठहराया जाए जिसमें हमारे कोई भाग नहीं था। उसने मृत्यु का दुख सहा जो हमारा था, ताकि हम जीवन पा सके जो उसका था। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। शैतान की योजना थी कि परमेश्वर और मनुष्य को एक दूसरे से सदा सदा के लिए अलग कर दे, परंतु मसीह में हम और अधिक परमेश्वर के साथ जुट गए जैसे कभी दूर हुए ही नहीं थे। क्योंकि यीशु हमारे साथ रहने के लिए आया, हम जानते हैं कि वह हमारी परीक्षाओं को जानता और दुखों से सहानुभूति रखता। आदम के प्रत्येक बेटों और बेटियों को समझ लेना चाहिए कि हमारा सृजनहार परमेश्वर पापियों का मित्र है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे सारे आशीषों के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर, तू हमें मदद कर कि हम अंधकार से निकलकर ज्योति में चले। तूने यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि हम पाप से बचाए जाए और अनंत जीवन पाए। तू हमारे जीवन में आ और हमें आनंद से भर दे और हमें विजयी जीवन व्यतीत करने में मदद कर। मेरे हरेक श्रोताओं को आशीष बहुतायत से दे। हम इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800-833-2231 पर संपर्क करें, या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान।
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।